أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لیکچر نمبر 33، حواس کی تقسیم. اس حوالے سے ہم نے یہ مطالعہ شروع کیا، اس کا آغاز کیا اس لیکچر کا. اس میں بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ ایک ذات ہے اور ایک اس کا امر ہے. اور امر جو ہے اس پہ لازم کر دیا اللہ نے کہ وہ ذات کو سمجھے. امر سے مراد امر ربی یعنی انسان ہو گیا، اور ذات سے مراد ذات مطلق یعنی اللہ کی ذات ہو گیا. اب اس پہ ایک سوال یہ اٹھا کہ جی کیسے سمجھا جائے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو جو چیز عطا کی گئی وہ حواس ہیں. حواس کی دو قسمیں بتائی گئیں، ایک ہے منقسم حواس اور ایک ہے غیر منقسم حواس. اب ہم اس سب کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ منقسم حواس سے کیا مراد ہے اور غیر منقسم حواس سے کیا مراد ہے. تو اس کے لیے ہمیں بات یہ بتائی گئی کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے بنیادی طور پہ دو زاویے ہیں. ایک کو انبیاء کرام کا طریقہ بتایا گیا اور دوسرے کو حکمائے ربانی یا فلاسفرز کا یا دانشوروں کا یا سائنسدانوں کا طریقہ. اور اس کے دونوں کی ڈیفینیشن یہ فرمائی کہ حکما جو ہوتے ہیں، دانشور جو ہوتے ہیں، جو فلاسفرز ہوتے ہیں، وہ ظاہر سے باطن کی طرف کا سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر کو دیکھ کر اس کی کنہا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. انبیاء کرام باطن کو سمجھ کر، تو جب باطن کو وہ سمجھ لیتے ہیں تو وہ ظاہر ان کے سامنے خود بخود کھل جاتا ہے. وحی کی طرزوں میں یہ بنیادی نقطہ، یہ بنیادی فرق ہے. دنیا کے تمام علوم ظاہر سے باطن کی طرف چلتے ہیں، اور وحی کی طرزوں میں یعنی اللہ کے ذہن کے مطابق اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں باطن سے ظاہر کی طرف لاتے ہیں. ڈائریکشن کا اتنا بڑا فرق ہے، 180 ڈگری کا صرف. تو جب ہم حواس پہ غور کرتے ہیں تو حواس اصل میں کیسے کسے ہیں؟ آج ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ یہ شعور اور حواس میں کیا فرق ہے. تو شعور اصل میں جو ایجنسی، جس ایجنسی کو ہم استعمال کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں یا جو اطلاعات ہمیں موصول ہوتی ہیں اس میں جو معنی پہناتے ہیں، وہ اس ایجنسی کا نام شعور ہے. اور حواس اصل میں انفارمیشن گیدرنگ ٹولز ہیں. یعنی بصارت جو ہے، یہ نظر جو ہے، یہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے اس چیز کے بارے میں اطلاعات کو موصول کرنے کا ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے. اسی طرح جب آپ سماعت کا استعمال کرتے ہیں، یہ حسیات ہیں نا، جن پانچ مشہور جو حسیات ہیں جنہیں حواس سے خمسہ کہتے ہیں، یہ پانچوں حواس دراصل ٹولز ٹو گیدر انفارمیشن ہیں. اور شعور وہ ایجنسی ہے جو ان حاصل شدہ انفارمیشن کو پروسیس کرتی ہے، پروسیس کر کے لاگو بھی کرتی ہے اور ان کو سمجھتی بھی اور ریکارڈ بھی کرتی ہے. تو یہ واضح ہو گیا کہ شعور اور حواس کا کیا سلسلہ ہے. تو ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں. تو آج ہم پیج نمبر 283 پہ شروع کر رہے ہیں کہ شکل و صورت کی دو طرزیں ہیں. ایک طرز مادی اور دوسری طرز नूरानी है। शक्लें दो किस्म की होती हैं। अब एक है नूरानी और दूसरी है मादी। अब आप इस जुमले पे गौर करें कि मादी शक्लो सूरत और नूरानी शक्लो सूरत किसे कहते हैं। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि मैं एक नाम लेता हूं, ये नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सब इससे वाकिफ हैं, इसलिए नहीं कि मेरी कोई लाइकिंग है। जैसे मैं फर्ज करें कि किसी मतलब सियासतदान का किसी का नाम लेता हूं, फर्ज करें कि इमरान खान। अब इमरान खान का एक मादी वजूद है, जब हम उसे आंखों से देखते हैं एक जाहिरी वजूद है, लेकिन जब मैंने नाम लिया तो आपके मेरे जहन में एक तस्वीरी खाका सा गुजरा। अब ये जो तस्वीरी खाका है ये कहां है? ये ख्यालों में है। तो नूर की इंटरप्रिटेशन हमने क्या अर्ज की थी कि ख्याल, तो ये जो ख्याल में हमें शक्ल सूरत दिखती है उसे नूरानी शक्ल कहेंगे। तो शक्ल सूरत की दो तर्जें हैं, एक तर्ज मादी है और दूसरी तर्ज नूरानी है। अब यही बात इसी मिसाल से समझ लें कि मादी शक्ल सूरत मतलब नूरानी शक्ल सूरत की वजह बन रही है, यानी कोई चीज मादी तौर पे हम आशना हैं तो जब हम उसे अपने ख्याल में सोचते हैं तो हम उसकी नूरानी शक्ल सूरत से वाकिफ हो रहे हैं या जान रहे हैं या उसको रिकॉल कर रहे हैं। अब हकीकत यह है कि असल में उसकी नूरानी शक्ल की वजह से उसका मादी वजूद है, क्योंकि रूहानियत में हर चीज को सीधा करके दिखाया जाता है और अमली जिंदगी में या इस मादी जिंदगी में हम हर चीज को उल्टा देखते हैं। तो इस तरह से इसे कंफ्यूज नहीं करना। तो बुनियादी बात यह है कि शक्लो सूरत की बात हो रही है कि शक्लो सूरत क्या है, वो भी इत्तलात का इज्तमा है। अब उसको कंसीव करने की या उसको परसीव करने की या उसको हासिल करने की दो तर्जें, एक जब वो मादी शक्ल सूरत में हो और दूसरा जब वो ख्याल की सतह पे हो यानी नूरानी सतह पे हो। मादी शक्ल सूरत से रूह का सुराग नहीं मिलता इसलिए कि मादा कसीफ है और रूह इंतहाई दर्जे लतीफ है। अब फर्क देख लेना, एक बंदे के बारे में ख्याल और एक उसका मादी वजूद, तो कसाफत कहाँ है? कसाफत उसके मादी वजूद में, वो ठोस है, उसमें शक्ल है। अब याद रखें कि चूंकि रूह है तो मादा है, रूह नहीं तो मादा नहीं, तो मुशाहिदाती दुनिया पर हर लम्हा फना है, रूह के ऊपर फना नहीं है। ये जो हमारी मुशाहिदाती दुनिया है यहां पे हर चीज हर लम्हा फना हो रही है, लेकिन रूह के ऊपर फना नहीं है। यही वजह है कि मादी शक्ल सूरत से रूह की तलाश मुमकिन नहीं है, लेकिन रूह से मादी शक्ल सूरत की कुनहा तक पहुंच जाना यकीनी अमर है। अब अक्स से मुराद नफ्स से मुराद वो रूह है जिस रूह के ऊपर मादियत का कयाम है। यहां पे ये नफ्स की डेफिनेशन, मन अरफा नफ्सहु। अब हम नफ्स का तर्जमा नहीं कर पा रहे, तो नफ्स से मुराद वो रूह है यानी रूह की वो स्टेज या दर्जा है जिस रूह के ऊपर मादियत का कयाम है। मादियत का कयाम यानी मादा जो है ये किस चीज पे कायम है, तो वो रूह पर कायम है, लेकिन उसको जिस सतह पे रूह के मादे का कयाम है उसे नफ्स कहा गया। अब ये एक इंतहाई पेचीदा मुबाहिस था या एक बात नहीं समझा सकते थे कि नफ्स किसे कहते हैं। नफ्स बातिन को कहते हैं, बातिन से मुराद है रूह का वो दर्जा जिसके ऊपर मादियत का कयाम है। जिस जब तक रूह मादियत को संभाले रहती है मादियत कायम रहती है, और जब रूह मादी वजूद से दस्तबरदार हो जाती है तो मादियत फना हो जाती है। अब इस तशरीह से उन लोगों की गलती वाजे हो जाती है जो मादियत को अवलियत देते हैं। मैंने ये पैराग्राफ जान के दोबारा पढ़ा, कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ा, लेकिन कल जरा जल्दी में होता है कि वो टाइम आखिर में होता है ना, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा अर्ज कर दिया ताकि इसमें बहुत काम की बात थी तो ये स्किप ना हो जाए। तो जब हम मज़ाहिर को मादियत कहते हैं तो इसका मतलब ये कि मज़ाहिर को ही हयात कहते हैं। गौर करें कि जब हम मज़ाहिर को मादियत कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मज़ाहिर को हयात कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मज़ाहिराती खदोखाल हर लम्हे फना हो रहे हैं। जब हम मज़ाहिर को अवलियत देते हैं और मज़ाहिर को वुसअत हयात करार दे देते हैं तो माजी का इनकार करते हैं, जबकि हम ये देखते हैं कि सारी कायनात माजी के अलावा कुछ नहीं है। आज का बच्चा आज जब दुनिया में आता है तो अभी एक लम्हा भी नहीं गुजरता कि उसकी पैदाइश माजी में चली जाती है। कायनात में हाल और मुस्तकबिल का कोई दर्जा ही नहीं है, इसलिए बच्चा जिस आन पैदा होता है दूसरे लम्हे उसकी जिंदगी माजी बन जाती है। अब हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गरामी है कि जो कुछ होने वाला है कलम लिखकर खुश्क हो गया। अब इस हदीस से माजी के अलावा जमाने का कोई और असलूब मालूम नहीं होता। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाल और माजी, हाल और मुस्तकबिल दोनों माजी के अज्जा हैं। अब यहां से मुस्तकबिल, हाल और माजी, इनके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए। यानी ये बात हजूर मुर्शिद करीम इसलिए इरशाद फरमा रहे हैं कि हमारे जो तसव्वुरात हैं माजी के बारे में, हाल के बारे में और मुस्तकबिल के बारे में, वो दुरुस्त नहीं हैं। वी हैव टू रिविजिट देम एंड वी हैव टू चेंज देम, क्योंकि असल बात यह है कि सब कुछ माजी है। असल बात यह है कि यहां सब कुछ माजी है, और उसकी मिसाल जो है वो हमने दी थी कि ये जैसे एक फिल्म है, प्रोजेक्टर पे चढ़ी हुई एक फिल्म है, तो जो लेंस के सामने से तस्वीर गुजर रही है वो हाल है, जो गुजर चुकी है वो माजी है, और जो अभी गुजरनी है वो मुस्तकबिल है। ये हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां तक है। अब जरा हकीकत भी नजरों से देखें, हकीकत शनासी के साथ देखें, तो वो तो पूरी फिल्म ही माजी है, क्योंकि वो तो बन चुकी हुई है। तो अब ये ज़ेली इसका उन्वान जो है इस चैप्टर का, आलम में फितरत, कि कायनात माजी में होने वाले जहूरात का अक्स है। माजी की हरकत को समझने के लिए हमें मुनकसिम और गैर मुनकसिम हवास में तफक्कुर करना चाहिए। ये शक्लो सूरत ये मुनकसिम हवास हैं और तमस्सुल गैर मुनकसिम हवास हैं। मुनकसिम हवास का इल्म हासिल, मुनकसिम हवास से गैर मुनकसिम को पा जाना मुमकिन नहीं। यानी ये जो तकसीम होने वाले हवास हैं उससे हम गैर मुनकसिम, जो तकसीम नहीं होते, उनको नहीं पाया जा सकता। लेकिन गैर मुनकसिम हवास से मुनकसिम हवास का इल्म हासिल हो जाता है, क्योंकि गैर मुनकसिम हवास ही असल हैं, जो जिनकी वजह से आगे वो मुनकसिम हो रहे हैं यानी तकसीम हो रहे हैं। दुनियावी अलूम को अगर हम अवलियत देते हैं और मज़ाहिर को वसत हयात करार देते हैं तो इसका मतलब बजुज इसके कुछ नहीं है कि हम माजी और मुस्तकबिल दोनों का इनकार कर रहे हैं। ये ज़रा गौर करें, जबकि माजी और मुस्तकबिल के साथ साथ हाल का तज़करा भी करते हैं। माजी में जो कुछ हो चुका है वही हाल और मुस्तकबिल में डिस्प्ले हो रहा है। खुदा का अमर ये है कि जब वो किसी चीज़ के पैदा करने का इरादा करता है, कहता है हो जा, वो हो जाती है, यानी अल्लाह के ज़हन में कायनाती प्रोग्राम जिस तरतीब के साथ था। क्या चीज़? आमाल और अफराद, आमाल और अफाल, अफराद के आमाल और अफराद की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? प्रोग्राम की। कायनाती सतह पे, कायनाती सतह पे जो प्रोग्राम जिस तरतीब के साथ था, अल्लाह ने कुन कहा और वो प्रोग्राम वजूद में आ गया। अगर हम इसे अपने महदूद तर्ज फिक्र के मुताबिक पढ़ेंगे और हम इसे पढ़ते हुए अपनी इनफरादी जिंदगी पे मुहित करने की जसारत करेंगे तो जाहिर है कि ये गलत हो जाएगा। जो बात कही जा रही है वो कायनाती प्रोग्राम के बारे में कही जा रही है, और कायनाती प्रोग्राम जिस तरतीब के साथ अल्लाह ने अपने जहन में तरतीब दिया, कौन कहा और वो प्रोग्राम होना शुरू हो गया। अब ये प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम अल्लाह का इरादा है। और अल्लाह का इरादा क्या है? अल्लाह का इरादा लामितनाही नूर है। अब लामितनाही नूर से क्या मुराद है? लामितनाही नूर से मुराद ये है कि अल्लाह के इरादे में कायनात मौजूद है, कायनात की माहियत, और कायनात के अंदर नौए और नौई अफराद पर अल्लाह ताला की हुक्मरानी कायम है। यानी बात हो रही है कायनाती प्रोग्राम की, उसके बाद नौई दर्जे पे आ गया, उसके बाद इनफरादी दर्जे पे। लेकिन यहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि वो एज इट इज हो रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर हुक्मरानी अल्लाह की कायम है। तो ये जरा बातों का फर्क वाजे हो करना जरूरी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस चीज का हुक्म देता हूं होने का वो हो जाती है। अब इस बात की तशरीह है कि अमरे इलाही के तीन हिस्से हैं, नंबर एक इरादा, नंबर दो जो कुछ इरादे में है यानी शय, और तीसरा इरादे में जो शय है उसका जहूर होना। यानी अल्लाह ने कहा ना, मैं जिस चीज को हुक्म देता हूं वो हो जाती है। अन यकूल लहु कुन फयकून, तो उस कुन फयकून में क्या चीजें हैं? एक इरादा है, दूसरा उस इरादे में कोई चीज है। अन यकूल लहु, ये लहु उसको कहता है, किसको कहता है? जाहिर है वहां कोई चीज मौजूद है जिसको कहा जा रहा है। और फिर इरादे में जो शय है उसका जहूर यानी फयकून, बस वो हो जाती है। तो इरादे के अंदर शय का होना इस बात की तरफ इशारा है कि जो अल्लाह चाहते हैं वो पहले से उनके इल्म में मौजूद है। चूंकि अमरे इलाही के मुतहरक होने से पहले कायनात की अशिया अल्लाह ताला के इल्म में मौजूद हैं, और कुन के बाद उन्हीं अशिया का जहूर हुआ है, इसलिए जो कुछ मौजूद है सब माजी है। अब माजी क्या है और इसकी मिकदारें क्या हैं? हमारे पास इन मिकदारों को समझने की बहुत सी तर्जें हैं। एक तर्ज यह है कि साइंसदान रोशनी की रफ्तार 186,282 मील फी सेकंड या तकरीबन 300,000 किलोमीटर पर सेकंड बताते हैं। तो हमें मजबूरन मानना पड़ेगा कि कायनात के एक लम्हे की रफ्तार रोशनी की रफ्तार है। अगर हम रोशनी के जोन में इसको कायनात को देखें तो वहां पे इसकी रफ्तार क्या हुई, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। मादी सतह पे ये 1 मील 2 मील 10 मील 50 मील 100 मील 200 मील पर आर है, फी घंटा। और रोशनी की दुनिया में ये रफ्तार हो गई 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और नूर की दुनिया में ये रफ्तार, जाहिर है कि वो जिस रफ्तार से नूर हरकत करता है वही रफ्तार उसकी वहां हुई। अब इससे अंदाजा कर लीजिए कि रोशनी की दुनिया में एक सेकंड का अहाता दायरा है मुहित, यानी दायरा जो है वो कहां तक मुहित है। तो गोया 300,000 किलोमीटर दाएं, 300,000 किलोमीटर बाएं, 300,000 किलोमीटर ऊपर, 300,000 किलोमीटर नीचे, 300,000 किलोमीटर आगे, 300,000 किलोमीटर पीछे, यानी ग्लोब, एक बड़ा सा ग्लोब बन गया एक सेकंड रोशनी की दुनिया में। तो इसका इमेजिन करें कितना बड़ा दायरा या ग्लोब या उसका वो जो रेडियस है वो 300,000 किलोमीटर है, डायमीटर 600,000 किलोमीटर हुआ, सॉरी डायमीटर, हाँ जी। तो जमाने मतवातर, अब आ जाएं जमाने मतवातर, ये इदराक की तकसीम का नाम है। ये जो सीरियल टाइम जिससे आप और मैं शौरी सतह पे वाकिफ हैं, इसका नाम है जमाने मतवातर। ये दरअसल इसका इदराक क्या है, हवास की तकसीम है। यानी हवास की तकसीम जब हो जाती है तो हम सीरियल टाइम से आशना होते हैं। कायनात के अंदर जो कुछ है हम अपने शौरी सतह पे उसको जमाने मतवातर के पैमाने से नापते हैं। ये कर रहे हैं आपके सारे साइंसदान कि जी ये कुरा अर्ज जो है वो इतने लाख साल पुरानी है, ये सूरज इतने बिलियन ईयर्स से है और इतने बिलियन ईयर मजीद चलेगा। ये इस तरह से जमाने मतवातर के पैमानों से नाप रहे हैं। कायनात लम्हों में बंद है, कायनात लम्हों में बंद है। वो जब कायनात पहला लम्हा जब अल्लाह ने इरादा किया तो वक्त जमानियत उसको कहा। अब वो एक लम्हा हो या दूसरा लम्हा हो, ये दोनों लम्हात इस बात के पाबंद हैं कि वो पहले लम्हे के अंदर मौजूद रहें। यानी पहले लम्हे के बाद बाकी सारे लम्हात असल में पहले लम्हे की तकसीम है या उसकी मल्टीप्लिकेशन है, यानी वो खुद को डिवाइड करते हुए या खुद को क्या कहेंगे प्रोपोगेट कर रहा है, बढ़ा रहा है एक लम्हे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो वो असल में मौजूद है पहले लम्हे में। तो कायनात लम्हात में बंद है। अब वो एक लम्हा हो या दूसरा लम्हा हो, दोनों लम्हात इस बात के पाबंद हैं कि वो लम्हे के अंदर मौजूद रहें। कायनात में किसी भी वक्त ठहराव नहीं है, कायनात का हर लम्हा मुतहरक है। यानी कायनात का लम्हा एक तगैयर है, यानी कायनाती सतह पर क्या है, कायनाती सतह पर हर लम्हा एक तगैयर है। दूसरा लम्हा दूसरा तगैयर है, तीसरा लम्हा तीसरा तगैयर है। देखे ना, इससे पहले जमानियत ऊपर के सतह पे लामुतगैयर है, यहां पे वो सब तगैयर का शिकार हो रही है। और चौथा लम्हा चौथा तगैयर है, क्योंकि कायनात हर लम्हा तगैयर पजीर है, इसलिए हर लम्हा अलग अलग है। यहां से तगैयर की वजह से हर लम्हा अलग हो रहा है और हर लम्हे के आफाल और हवादिस अलग अलग हैं। जब हर लम्हे के हवादिस और अफाल अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर लम्हे के दरमियान फासला है, ये अलग होने का मतलब है डिस्टेंस होना। वो जो फासले की बात बताई गई थी वो यहां पे आप देखें पूरी तरह वाजे हो गई। तो हर लम्हे के बाद फासला, हर लम्हे के बाद फासला, असल में क्या चीज है, जमाने की जुदागाना हालतें हैं या जुदागाना वहदतें हैं, यानी उनकी सेंट्रैलिटीज डिफरेंट हैं। अब जमाने मतवातर ये मालूम वारदात है और जमाने गैर मतवातर नामालूम वारदात है। जमाने मतवातर सीरियल टाइम और जमाने गैर मतवातर नॉन सीरियल टाइम, जिससे आप ख्वाब में वाकिफ हैं। ख्वाब के हवास जो हैं वो जमाने गैर मतवातर हैं और जमाने मतवातर की वारदात वहदतें ऐसी वारदातों का मजमुआ हैं जिनसे शऊर वाकिफ है। जमाने मतवातर की वहदतें यानी जो सीरियल टाइम है, इसकी जितनी भी सेंट्रल जहां जहां हमारी तवज्जो जाती है वहां से जो चीज हमारे जहन में वारिद होती है उसे वारदात कहते हैं। तो इसकी वहदतें ऐसी वारदात का मजमुआ है जिनसे शऊर वाकिफ है। और जमाने गैर मतवातर की वहदतें वो ऐसी वारदात का मजमुआ जिनसे शऊर वाकिफ नहीं है। अब इसकी फिर वही मिसाल ख्वाब और बेदारी के हवास की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आदम के पुतले में अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदम को इल्मुल अशिया अता किया। अब देखिए इल्मुल अस्मा का तर्जमा इल्मुल अशिया की है। अल्लाह ने आदम को खिला बनाया, इस खिला में अल्लाह ने रूह फूंकी। ये जो लफ्ज है ना नफख्ता फीहे मिन रूही, इसी से पता चल रहा है कि आदम को मट्टी से बनाया। मट्टी का मतलब खिला, खिला में कुछ फूंका गया। भाई अगर पहले से कोई भरा होता तो उसमें क्या चीज डाली जाती, कुछ भी नहीं। तो वो खिला में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी यानी कुछ सलाहियतें मुंतकिल कर दी। अब रूह फूंकने के बाद आदम को इल्मे शय अता किया। अब ये दोबारा सुन लीजिए कि वहां पे बात हो रही है इल्मुल अस्मा की और हजूर मुर्शिद करीम इसका तर्जमा कर रहे हैं इल्मे शय, ये है वो असल इल्म। तो आदम दो एजेंसियों से मुरक्कब है, एक रूह और दूसरा इल्मे शय। ये आदम की डेफिनेशन आ गई। आदम असल में क्या चीज है, एक रूह है यानी अल्लाह की बख्शी हुई सलाहियतें हैं और दूसरा इल्मे शय अशिया का इल्म, इल्मुल अशिया। और इल्मे अशिया हासिल होने के बाद अशिया का इल्म हासिल हुआ, यानी इल्मुल अस्मा हासिल होने के बाद आदम को अशिया का अपनी सलाहियतों का इल्म हासिल हुआ। पता चला कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं और साथ में ये भी मालूम हुआ कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। बात वही है कि हम सिर्फ अल्फाज पढ़ रहे हैं, जैसे कुरान पढ़ रहे हैं, सिर्फ तिलावत कर रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं, समझ नहीं रहे तो अमल कहाँ से हो जाएगा। अगर अमल कर रहे हैं तो उस दर्जे पे नहीं कर पा रहे जिस दर्जे पे अल्लाह चाहता है, तो अमल कैसा होगा। अब ये इल्मे अशिया जो है ये आलम फितरत है, यानी चीजों का जैसी वो हैं इसको जानना इल्मे फितरत है, आलम फितरत है। और आलम फितरत ये आलम शहादत ये सब जमाने मतवातर है। लेकिन रूह के बिल मुकाबिल जो जमानियत है वो गैर मतवातर, जमाने गैर मतवातर यानी आलम गैब है। तो आलम गैब क्या हुआ, जमाने गैर मतवातर। अब इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन ये बनी यानी कि खलासा फरमा रहे हैं हजूर मुर्शिद करीम सारी बात का जो इस चैप्टर में बयान हुई कि रूहे इलाही और इल्मे अशिया से आलम फितरत यानी जमाने मतवातर वजूद में आ गया और ये सारा मिलकर आलम शहादत कहलाया। और रूहे इलाही और रूह के अंदर जो इल्मे अशिया है जिसको तकवीन कायनात कहा गया। अब यहां पे मजीद एक बात की वजाहत आ गई ब्रैकेट के अंदर कि ये इल्मे अशिया यानी इल्मुल अस्माई असल में कायनात का तकवीनी प्रोग्राम है। तो कायनात के तकवीन यानी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, तकवीन का लफ्ज जो है कुन से यानी किसी चीज को बनाने से लेकर उसको चलाने तक, ये सारे इंतजाम तकवीन कायनात कहलाते हैं। यानी रूहे इलाही जमा इल्मे अशिया यानी तकवीन कायनात बराबर है आदम के, और रूह जमा इल्मे अशिया ये भी आदम के बराबर है। अब आदम खिला है, खिला में रूह है, रूह में इल्मे अशिया है और इल्मे अशिया आलम फितरत है। अब आलम फितरत के आगे दो हिस्से हो गए कि आलम फितरत जमाने मतवातर है और जमाने मतवातर जमाने गैर मतवातर पर कायम है, यानी सीरियल टाइम की बेस जो है वो नॉन सीरियल टाइम है और नॉन सीरियल टाइम की बेस है रियल टाइम यानी जमाने हकीकी। अब जमाने गैर मतवातर जो है ये आलम गैब है, तो गैबुल गैब जमाने हकीकी, जमाने मतवातर और जमाने गैर मतवातर, ये तीन जमाने हुए। यानी हमारे यहां माजी मुस्तकबिल हाल को तीन जमाने कहा जाता है रूहानियत में, जमाने हकीकी, जमाने गैर मतवातर और जमाने मतवातर, ये तीन जमाने हुए। तो जमाने मतवातर वो जमाना है जिसमें हम आलम नासूत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जमाने में हवास हर आन हर लम्हा तकसीम हो रहे हैं। अब नजर आने वाली कायनात के तमाम अफालो हवादिस को हम जमाने मतवातर के पैमाने से नापते हैं। जिंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जो कायम हो यानी उसको कयाम हासिल हो। हमारी जिंदगी का हर लम्हा मुतगैर है। यहां पे एक छोटी सी बात, या हय्यो या कय्यूम इसीलिए कहा जाता है कि इसका वर्द ज्यादा करें क्योंकि हर लम्हा मुतगैर है, उसको कयाम नहीं है। हम उसी कयाम वाले लम्हे के तलाश में या हय्यो हयात या कय्यूम यानी उसके कयाम की दरख्वास्त कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हमारी जिंदगी का हर लम्हा मुतगैर है, हम ये बात जानते हैं कि हम कदम उठाने के बाद दूसरा कदम उठाते हैं तो पहला कदम मुतगैर हो जाता है, तब दूसरा कदम उठता है, जब तो तीसरा कदम मुतगैर हो जाता है। यानी जिंदगी का कोई लम्हा उस वक्त तक लम्हा नहीं है जब तक उसमें तगैर ना हो। तो हर लम्हे की वारदात और जिंदगी के हवादिस जुदा जुदा हैं और हर हादसा हवादिस की वाहिद है हादसा। इसी को कैफियत कह के बयान किए कि हर हादसा यानी हर दो कैफियत के दरमियान एक फासला है, आप एक ही कैफियत में नहीं रह सकते। जब हम एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाते हैं तो एक कदम का दूसरे कदम में जाना एक तगैयर है और एक कदम के बाद दूसरा कदम फासला है। आलम गैब को जानने के लिए रूह को समझना जरूरी है क्योंकि आलम गैब का इनशराह यानी उसकी तशरीह या उसकी उसका खुलना रूह में होता है। रूह से मुराद लाशऊर है। अगर हम आलम गैब को जानना चाहें तो जरूरी है कि शऊर की दुनिया से निकलकर लाशऊर की दुनिया में दाखिल हों, क्योंकि शऊरी दुनिया के हवास में गैब से आशना होना मुमकिन नहीं है। जमाने गैर मतवातर यानी नॉन सीरियल टाइम है, और जमाने हकीकी इल्मे इलाही है जिसको गैबुल गैब कहते हैं। अब जमाने गैर मतवातर फरिश्तों की दुनिया है, ये जिसे जिसको इस्तलाह में गैब कहा गया है। शौरी दुनिया ये जमाने मतवातर है, यानी इससे निकल कर बंदा जब लाशौरी दुनिया में दाखिल हो जाता है तो उस पर गैब मुनकशिफ हो जाता है, यानी फरिश्तों की दुनिया सामने आ जाती है। जिस तरह आदमी शौरी दुनिया में रहकर शौरी दुनिया का मुशाहिदा करता है, उसी तरह सालिक लाशौर में दाखिल होकर फरिश्तों को देखता है। तो शऊर के बिल मुकाबिल दो एजेंसियां, शऊर के बिल मुकाबिल दो एजेंसियां, एक शऊर खुद है, उसके सामने मजीद दो एजेंसियां, एक है गैबुल गैब और दूसरी है गैब। यानी एक गैब जो है ये जमाने गैर मतवातर है, और गैबुल गैब ये जमाने हकीकी है। आलम में गैब के लम्हात से हमारा शऊर वाकिफ है ना वाकिफ है? आलम में गैब यानी जमाने गैर मतवातर यानी नॉन सीरियल टाइम के जो लम्हात हैं उनसे हमारा शऊर ना वाकिफ है, लेकिन रूह आगाह रहती है। मेरा ख्याल है टाइम पूरा हो गया, यहाँ पे हम रुक लेते हैं, इसे रुक जाते हैं, कल बाकी से पढ़ लेंगे।